शांति। आज के प्रातःकालीन सत्र में हम सब के बीच में विराजमान है हमारे आदरणीय राजयोगिनी कुलदीप दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप मुख्यतः पंजाब की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1954 में आपका वहाँ लौकिक जन्म हुआ और दिल्ली की धरनी पर 1957 में आपका ईश्वरीय जन्म, अलौकिक जन्म हुआ। बहुत भाग्यशाली रहे कि 1963 में पहली बार मधुबन धरनी पर आकर मम्मा और बाबा की गोद में बैठने का सौभाग्य मिला, या यूं कहें आज उसकी डायमंड जुबली है ना। 1963 और आज है 2023। दीदी पूरे 60 वर्ष मम्मा बाबा की धरनी में पहली बार पधारे थे और उनकी गोद में बैठे थे। हाँ, लेकिन यहाँ पर पहली बार उसकी डायमंड जुबली आपकी और फिर तो जैसे मम्मा बाबा से बहुत प्रेरणाएं ली, दादियों से भी बहुत प्रेरणाएं ली, लौकिक अलौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बड़े हुए और फिर जीवन ईश्वरीय सेवाओं अर्थ समर्पित किया। और वर्तमान में तो आप हैदराबाद शांति सरोवर के डायरेक्टर हैं और उस एरिया के सब जोनल हेड भी हैं, और आपके अंदर में करीब 50 से भी अधिक सेवा केंद्र है जिनका आप कुशल संचालन करते हैं, और 200 से भी अधिक टीचर्स बहने हैं जिनकी माँ बनकर आप बहुत अच्छी आध्यात्मिक रूहानी पालना करते हैं। और हमारे पास जो स्पोर्ट्स विंग है आप उसके वाइस चेयरपर्सन हैं, साथ साथ हमारी जो एजुकेशनल सोसाइटी है उसके आप गवर्निंग बॉडी मेंबर भी हैं, और कई सारे पुरस्कार आपने हासिल किए हैं। महावीर विश्व सद्भावना पुरस्कार, महारानी झांसी पुरस्कार, अभिष्ठी पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। आप सब तो उनकी पालना में पल रहे हैं बहुत प्रैक्टिकली। जैसे बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण तो कुलदीपक है, और जिनका नाम ही कुलदीप है तो ऐसी हमारी कुलदीप दीदी जो ज्ञान की रोशनी सब तक पहुंचाकर सबकी रूहानी पालना कर रहे हैं, आज बहुत सुंदर विषय पर प्रकाश डालेंगे। कल का जो वरदान था, सर्व के प्रिय सफल मूरत भव, है ना। और सर्व के प्रिय माना स्वयं के भी प्रिय, ब्राह्मण परिवार के भी प्रिय और पिता परमात्मा के भी प्रिय। तो कैसे हम ऐसे सर्व के प्रिय बने, उस सर्व के प्रिय बनने की क्या कला है, हम दीदी के अनुभव से जानेंगे समझेंगे। सुनते हैं दीदी को, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। थैंक यू इंदिरा बेन। हम सब गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और इस ईश्वरीय परिवार के सदस्य भी हैं। स्टूडेंट के रूप में बाबा हम बच्चों को क्या कहते, 3 सर्टिफिकेट लेने हैं जो इंदिरा बेन ने सुना दिए कि हम स्वयं प्रिय, लोकप्रिय या ब्राह्मण परिवार के प्रिय और प्रभु प्रिय बने। ये 3 सर्टिफिकेट वाले ही सतयुग में जाएंगे। पहला कौन सा लेना है? पहला सर्टिफिकेट कौन सा लेंगे? पहला सर्टिफिकेट प्रभु प्रिय बने। जो बाबा का प्यारा है वो सर्व का प्यारा होगा, वो स्वयं को भी प्यारा लगेगा ही। बाबा के प्यारे बच्चे कौन हैं? कौन बन सकते प्यारे? नहीं, हाथ उठाने के लिए नहीं बोला, प्यारे कौन बनेंगे? कौन से बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं? शिव बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? बाबा का प्यारा बनने के लिए इस दुनिया से न्यारा बनना है। पहले तो हमें इस देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से सबसे न्यारा बनना है। और बाबा ने हमारा ये जीवन, इसमें बाबा हम बच्चों को कई बार कहते हैं, एक है जो भक्ति मार्ग में सोचते थे ध्यान में जाना, प्रभु का साक्षात्कार हो जाना, वो बहुत बड़ी स्टेज है। लेकिन बाबा ने कहा मुझे ध्यानी तो आत्माएं पसंद नहीं है, ज्ञानी तो आत्माएं पसंद है। ज्ञानी तो आत्माओं से भी ज्यादा योगी तो आत्माएं बहुत प्रिय है। क्योंकि योगी माना जो परमात्मा से प्यार करता है। योग माना क्या है? परमात्मा के प्यार में खो जाना, लवलीन अवस्था। उसी को भक्ति में क्या कहते, परमात्मा में लीन हो जाना। लेकिन बाबा के लव में लीन होना, ये लवलीन स्थिति हमारी हमें प्रभु प्रिय बनाती है। क्योंकि जो प्यारा होता है उसको याद करना मुश्किल नहीं होता है, उसके लिए क्या कहा जाता है, आपको भुलाना मुश्किल है। एक बार भी मिल लेते किसी प्यारे व्यक्ति से तो कहते हम भूल नहीं सकते हैं। एक तरफ हम कहते हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं है, दूसरी तरफ क्या कहते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। तो इसका मतलब हमारा प्यार कितना है बाबा से, बताइए। भूलना चाहिए प्यारी चीज को? जो आपकी प्यारी चीज है हमेशा उसको साथ रखते हो। देखो माताओं का प्यारा है पर्स, कभी नहीं छोड़ते, छोड़ते हैं, भूल गए, कभी नहीं भूलते। भूलेंगे भी तो भाग के आएंगे, मेरा पर्स। तो मेरा बाबा इतनी बार याद आता है पर्स के साथ, जितना पर्स के साथ प्यार है, अगर उतना प्यार बाबा से हो जाए तो बाबा के सिवाय कुछ दिखाई देगा? तो इसलिए हमारे नैनों में बाबा हो, हमारे मुख में भी हम जो बात करें बाबा के सिवाय कोई बात नहीं, और हमारा व्यवहार भी कैसा हो जो बाबा ने सिखाया है। बाबा की श्रीमत क्या है, आपसी व्यवहार कैसा हो, अलौकिक। लौकिकता में नहीं आना कि आज से हम फ्रेंड हैं, आज से तुम हमारा मोबाइल के है ना ग्रुप में आ जाओ, ये ग्रुपिज्म बनाना ये सब बाबा ने नहीं सिखाया, ये श्रीमत के विरुद्ध है। तो बाबा को वो बच्चे प्यारे लगते जो सदा श्रीमत प्रमाण, ब्राह्मण कुल की सर्व मर्यादाओं पर चलने वाले और अपनी या औरों की मत को कभी भी न मिलाना न सुनना। कई बार हम कहते मेरी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन चलते चलते इस भाई ने या इस बहन ने कुछ ऐसी बात सुना दी, मेरा मन विचलित हो गया, ज्ञान में चलूं या न चलूं। अब जिससे एक बार प्यार हो जाता है उसको छोड़ना भी मुश्किल होता है। और हम सब ने ब्राह्मण जीवन में ये ठान लिया है कि हमारा प्यार, सच्चा प्यार एक बाबा से ही रहेगा, और हमारा कोई सच्चा साथी नहीं है। पक्का है ना सबकी प्रतिज्ञा? एक बाबा के सिवाय कोई है हमारा जो हमारा ध्यान रख सकता है? जानकी दादी हमेशा अंडरलाइन कराती थी, जो बाबा हमेशा कहते जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान मैं हर पल रखता हूं। बाबा ने हमें बाप, टीचर, सतगुरु रूप में सब प्रकार की पालना, प्यार, पढ़ाई सब दिया। क्या नहीं दिया है बाबा ने? हमने साकार पालना ली, अव्यक्त पालना भी ली, निराकारी पालना में भी हम पल रहे हैं। कितना समय हमने बाबा का प्यार और पढ़ाई की पालना प्राप्त की, बाबा की श्रीमत पर हम चलने के अभ्यासी भी हैं, लेकिन कभी कभी मन मत मिक्स होने से, कोई भी चीज जब दो मिक्स करते तो कुछ गड़बड़ होती है ना। आप जब आपकी शरीर में भी कुछ हलचल होती तो डॉक्टर पूछता है क्या गड़बड़ की, क्या मिक्स किया आप जो रोज खाते हो उसमें, क्या एक चीज ऐसी ऐड हो गई जो आपके पेट में गड़बड़ हुई या आपके शरीर में पूरा हलचल हो गई है। हम फिर कारण ढूंढते हैं ना कि मैंने कभी भी ये चीज नहीं खाई थी, आज खाई, तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो हमारी स्थिति में भी हलचल होती है तो सोचना चाहिए क्या ऐसी मत मिक्स हुई है श्रीमत के अलावा जो हमारी स्थिति में इतनी हलचल और एकदम हमारी अच्छी अवस्था एकदम नीचे आ जाते। कल भी मैं एक कहानी याद कर रही थी कि आप सबने सुनी भी होगी कि जैसे बाबा हम बच्चों को कहते, लास्ट मेरा पार्ट जो है ना धर्मराज का है, लेकिन मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मेरा जो राइट हैंड है वो धर्मराज छोड़ेगा नहीं। तो हम जो भी कर्म करते श्रीमद प्रमाण, तो हमें धर्मराज का मुख देखने की आवश्यकता नहीं। अगर हम श्रीमद प्रमाण चल रहे हैं तो हम धर्मराज से हाथ मिलाकर जाएंगे, लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं चलता हम क्या करते। हमारे संस्कार स्वभाव 63 जन्मों के इतने कड़े संस्कार है, कहां मिक्स हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो जैसे एक बार एक राजा ने सभी को भोजन पर बुलाया था, जितने भी उनके राज दरबार में पंडित पुजारी सभी को भोजन जो है खुले मैदान में रखा था और बहुत पदार्थ थे, सभी को खुला निमंत्रण था, कोई भी वंचित नहीं रहे, ये भोजन सबको स्वीकार करना है। तो जिन्होंने भी भोजन खाया उस भोजन में ऊपर से एक चील जा रही थी सांप को पकड़ करके, ईगल, स्नेक का मुंह खुला था, उसके मुख से तो विष टपकता है ना, वो सभी के भोजन में मिक्स हो गया, सबके सब मर गए, क्योंकि जहां भोजन बन रहा था वहीं पर वो सांप जो है ऊपर से गया और वो भोजन सभी को परोसा गया, सबके सब मर गए। राजा को पता नहीं चला ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इतने सब मर गए, इसका दोष मेरे ऊपर। तो यमराज ने चित्रगुप्त को कहा पता लगाओ इतने लोग कैसे मर गए, क्या कारण है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि पता ये लगा है कि एक ईगल जो है वो सांप को ले जा रही थी, उसका दोष नहीं है, उसका भोजन ही है जीव जंतुओं को मार कर खाना, और सांप का भी दोष नहीं है, उसको चील ने पकड़ा, उसका मुंह खुला है, उसमें से विष टपका है। राजा का तो कोई दोष नहीं भोजन खिलाने का, उसने तो अच्छा भोजन खिलाया। तो चित्रगुप्त को कहा फिर भी आप ढूंढो, कोई तो दोषी होना चाहिए जिसको मेरे पास पेश किया जाए। कुछ पंडित रह गए थे, वो किसी एक माता से पूछे, माता जी वो जहां राजा भोजन दिए हैं सभी को कहां से वो रास्ता मिलता है। वो माता बोली क्या तुम मरने जाओगे, वो राजा ने आज सबको भोजन खिला के मार दिया, तुम मरने की तैयारी कर रहे। चित्रगुप्त ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि वो क्या किया उसने, उसका काम था क्या निंदा करना राजा की, जबकि धर्मराज ने भी उसकी कोई कमी नहीं निकाली कि पता नहीं चल रहा दोषी कौन है, फिर भी देखो अभी कोई दोषी हो तो उसको पकड़ के लाओ। तो इस माता ने जबरदस्ती अपना हिसाब किताब बना लिया निंदा करके कि राजा जो बेचारा इतना प्यार से सबको भोजन खिलाएगा वो मारने के लिए थोड़ी खिलाएगा, उसको भी पता है मेरे को सजा मिलेगी। तो इसलिए कई ऐसे कर्म हमसे हो जाते हैं जो हमें पता नहीं चलता है फिर हमारा योग कैसे लगेगा। क्योंकि मैंने दूसरे को वियोगी बनाया, उसका योग भी बाबा से नहीं लगने दिया। जब हम किसी की निंदा करते उस समय हमारा योग बाबा से होगा? बाबा कहते मेरी याद माना, हमेशा बाबा के गुणगान करना, बाबा के गुणों की माला। भक्ति में तो हम हाथ की माला लेके जपते थे, लेकिन अभी हमको बाबा के गुण कर्तव्य सब कुछ हमने अनुभव किया है। तो जितना बाबा के गुणगान करते हैं और हम अगर गुणग्राही दृष्टि से बाबा की सिलेक्ट की हुई आत्माओं को देखेंगे, कितने विशेष आत्माएं हैं, एक एक किस किस विशेषता से बाबा ने हम सबको चुना है। एक की विशेषता ना मिले दूसरे से। तो अगर हम विशेष अपनी दृष्टि पर ये विशेषता का चश्मा लगा लेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? सबकी विशेषता। जैसे काला चश्मा लगाएंगे तो आप सबका ड्रेस भी मेरे को कैसा लगेगा कि सब काले कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, लेकिन चश्मा उतारेंगे तो पता चलता है ना, काले कपड़े नहीं, मेरा काला चश्मा है। तो कई लोगों को कहीं भी चले जाएं, कोई भी मिले, उसमें क्या कमी है वो देखने की आदत होती है। उससे क्या होगा कि हमारा मन कमजोर हो जाता है और योग नहीं लगता। फिर हमें क्या लगता है, ऐसे आत्माओं को फिर ऐसा महसूस होता है अंदर ही अंदर, क्या पता मेरा क्या होगा, अंत में मुझे कौन सहयोग करेगा, बाबा भी करेगा या नहीं करेगा, उसको डाउट आता है अपने अंदर। तो इसलिए बाबा के प्रिय माना, जो बाबा को प्रिय है वो हमको प्रिय है। ये ईश्वरीय परिवार किसकी रचना है? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर है। तो बाबा ने जिनको पसंद किया वो मुझे भी पसंद है। देखो ब्रह्मा बाबा, साकार बाबा जो है ना, शिव बाबा ने उसको चुना। भले लोग बाहर वाले कहते क्यों इसको ब्रह्मा बनाया, लेकिन हमको तो ब्राह्मणों को मालूम है ना क्यों ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने अपना रथ बनाया। उसमें बहुत सी विशेषताएं थी, क्योंकि बाबा ने कभी लौकिक जीवन में भी किसी व्यक्ति की इंसल्ट नहीं की, किसी को दुख नहीं दिया, किसी की कमजोरी नहीं देखी। हमेशा अपनी कमजोरी को बच्चों के आगे भी बाबा हमेशा क्या कहते थे, सॉरी, है ना। सारी रात बाबा को खांसी से नींद नहीं आती थी, लेकिन एक दिन बाबा क्लास में लेट आए और बाबा ने कहा, बच्चे सॉरी, क्योंकि आपको भी और शिव बाबा को भी वेट करना पड़ा 5 मिनट, 6:35। हम तो कितना भी देरी से आते कभी सॉरी नहीं बोलते बाबा को। तो बाबा ने हमारे लिए क्या नहीं किया, देखिए बाबा को हम जब बाबा की हिस्ट्री सुनते हैं कि बाबा ने अपनी तरफ से किसी दिन भी हमारा भोजन बंद नहीं किया, माना मुरली सुनाना बंद नहीं किया। जबकि आप सबने सुना है कि बाबा की एक बार सर्जरी हुई थी यहाँ पर, तो कोई सर्जन ठीक से नहीं था, लेकिन उन्होंने टांके ऐसे लगाए कि टांकों में से ब्लीड हो रहा था। फिर बॉम्बे में डॉक्टरों ने बुलाया और एकदम तैयारी रखी थी कि सीधा स्ट्रेचर से ऑपरेशन थिएटर में जाकर हम सर्जरी करेंगे। तो बाबा ने थिएटर में जाने से पहले कहा, ठहरो, मुझे बच्चों के लिए भोजन तैयार करना है। तो उनको क्या पता कौन सा भोजन, उन्होंने कहा, बाबा जी आपके इतने सारे शिष्य हैं, ये लोग भोजन बना लेंगे, आप क्यों तकलीफ करते हो। बोले, ये नहीं बना सकते, मैं रूहों के लिए भोजन बनाता हूं। तो कहा, जो भोजन बनाना जल्दी बनाओ, फिर हम आपका सर्जरी करें। तो उनको भी आश्चर्य लगा, देखो बाबा को हमसे कितना प्यार है, उसने अपने दुख दर्द को भुलाकर भी ऐसा नहीं सोचा आज मुरली नहीं सुनाएंगे मेरे बच्चे मर जाएंगे। माँ कैसा सोचती है, मैं एक दिन सो जाऊंगी तो मेरे बच्चों को भोजन कौन देगा। तो ब्रह्मा को इसीलिए तो माँ कहते हैं ना, बाबा, शिव बाबा बाप है, ब्रह्मा तुम्हारी माँ है। तो अगर ब्रह्मा माँ ने एक दिन भी हमारे लिए भोजन मिस नहीं किया, बनाना, मुरली सुनाना, तो हम मुरली सुनने में गफलत क्यों करते। हम तो आजकल देखेंगे, जब से कोरोना आया उसने क्या करुणा बरसाई है कि घर बैठ के जूम में झूमो, खर्चा कम खर्चा वाला नशीन बोलता है ना बाबा। तो ये हम अपनी श्रीमत, अपनी मनमत मिला के बोलते बाबा की श्रीमत है कम खर्च वाला नशीन। हम अपने हिसाब से बाबा की श्रीमत को भी अपनी मनमत में कन्वर्ट कर लेते। कहाँ कहा है बाबा ने कम खर्च करने के लिए, मुरली सुनने के लिए नहीं। जो आप वेस्ट खर्च करते हो, जहां हम खुद काम करके पैसा बचा सकते हैं, उसके लिए बाबा ने कहा कम खर्च। माने जैसे हम सेवा करते हैं ना, हमारे भाई लोग सब तैयारी करते हैं, स्टेज इतनी सुंदर सजाते, अगर हम एक डेकोरेटर को देंगे वो हजारों रुपए या आजकल तो लाखों में बिल आता है, और हमारे भाइयों ने कर दिया कम खर्च में, और बाला निशीन बाबा का नाम भी बाला हो गया, कितना सुंदर सजावट है। तो ये कम खर्च बाला नशीन नहीं है कि हम जूम में सुन के मुरली और सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि आप देखिए मुरली यहां सुनते समय हम सो जाते हैं। जूम में क्या है, ऑप्शन है, आपका वीडियो बंद करके आप पलंग पे सो के भी मुरली सुनते होंगे, हमको क्या पता है ना, सुनते भी कि नहीं सुनते। कोई माताएं किचन का काम भी शुरू कर देती हैं। तो ये प्यार है बाबा से, इसको कहेंगे बाबा के प्यारे बच्चे, क्या उनको बाबा का प्यार मिलेगा जो इतना भी त्याग नहीं कर सकते कि मुरली के समय हम ये समय जो हमने बाबा को दिया 4 बजे से या 3:30 बजे से 8 बजे तक हमारा समय बाबा को हमने दान में दे दिया है। दान में दी हुई चीज कोई लेता है वापिस? एक व्यक्ति से भी हम नहीं लेते। अगर आपको हम अभी गिफ्ट दें कि भाई लो ये, मैं आप सभी को एक एक पेन देती हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं बोलूँ जिनको भी मैंने पेन दिया था मेरा पेन वापिस दो, क्योंकि आप लोग कोई आज्ञाकारी नहीं हो, हाँ, तो अच्छा लगता है। कैसे घटिया तरीका है ये, कोई तरीका है? नहीं देना था ना, लेना ही था तो क्यों दिया। तो एक व्यक्ति भी नहीं कोशिश करता कि दी हुई गिफ्ट में वापिस मांगू, कभी नहीं मांगते ना, ये रॉयल्टी है। और हम बाबा को गिफ्ट करके वो टाइम अपने लिए लगा रहे हैं, पता नहीं है हमको, इग्नोर कर रहे हैं ना बाबा को कि चलता है, बाबा ने क्या कहा, जो अभी चला लेते हैं लास्ट में उनको चिल्लाना पड़ेगा। तो ये समय है हमें अपनी स्थिति बनानी है। इस ईश्वरीय परिवार का प्यार मिलना भी बड़ा सौभाग्य है। किसको मिलता है? जो जितना बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, हर मर्यादा का पालन करते, वो अपने आप सबको प्रिय लगते। देखो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की एक्यूरेट श्रीमत पर चले, ब्रह्मा बाबा को देखकर हमारी दादियां भी ऐसी तैयार हुई। सबको दादियां प्यारी लगती थी, नहीं लगती थी? लगती है ना, आज भी ऐसा लगता है दादियां हमारे बीच में आ जाएं। फोटो भी देखते तो आज भी मैं तो ओम शांति भवन में दादी दीदी को 2-3 दिन से जब से आए देख करके ऐसा लगता है दोनों सामने बैठे हैं, क्योंकि हमने उनकी पालना ली है, प्यार लिया हुआ है। वो सब बातें याद आती हैं कि हम दीदी के बाजू में बैठते थे, दीदी हमारे साथ प्रश्न उत्तर का बैडमिंटन खेलती थी। दीदी बोलती थी बैडमिंटन खेलें, मैं प्रश्न करूंगी तो उत्तर देना। मुरली सुनते सुनते दीदी नोट्स लिखती थी, मैं उनकी कुर्सी के बाजू में बैठती थी, ऐसा मार के पूछती थी क्या सुना है ना। तो इतना अच्छा लगता था, यही तो प्यार है ना। हमारे पर बड़ों का ध्यान होना ही प्यार है। जरा सा ऐसा मारे, क्या बहन जी ने मेरे सिर पे मारा, हमारा तो दादियां कान खींचती थी। ऐसा भी जानकी दादी हमेशा ऐसे ऐसे करके बात करती थी, मार मार के, मारू बोलती जरूर दादी, हम तो आपके प्यारे हैं ना, जिससे प्यार होता है उसको ही थप्पड़ मारते हैं ना, आप लोग नहीं मारना कहीं जाकर के अभी घर में अगर मार भी दिया तो जिससे प्यार होता है उसका थप्पड़ बुरा नहीं लगता। माँ अगर अपने बच्चे को मारती है किस लिए मारती है? उसको अच्छा बनाने के लिए। पर बाबा ने तो मना किया हुआ है, हाथ नहीं उठाना है, लॉ अपने हाथ में नहीं लेना है। बाबा बच्चों को भी ठीक करने के लिए हमेशा बोलते थे उनकी फेवरेट चीज बंद कर दो, अगर उनको चॉकलेट अच्छी लगती बोलेंगे तुमको चॉकलेट नहीं देंगे, या जैसे बाबा कहते वैसा तो कहानियों में कुछ भी बताते ना, कृष्ण को रस्सी से उसकी माँ बांध देती थी, वो तो रस्सी तोड़ के भी मक्खन चुराने चला जाता था। तो तुम भी बच्चों को बांध सकते हो लेकिन मारना नहीं। तो जो हमारी मर्यादाओं में लिखा है कि ये नहीं करना है वो हमें नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, अमृत वेला मिस नहीं करना है, मुरली मिस नहीं करनी है। जिनका पढ़ाई से प्यार है, जिनका अमृत वेले से प्यार है, हमेशा मैं हरेक को ये बोलती वो सच्चा ब्राह्मण है, वही उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मुरली ही हमारे बाबा की श्रीमत है। हमको श्रीमत कहां से मिलती है? मुरली से ही मिलती है ना। भले निमित्त आत्माओं से भी जो हमें डायरेक्शन मिलता है वो भी बाबा की कही हुई बातों अनुसार मर्यादा पूर्वक हमें मर्यादाएं सुनाते हैं ना, तो वो श्रीमत हमें किससे भी मिले उसको बहुत प्यार से लेना है। और जिससे प्यार होता है उसके लिए हम कुर्बान हो जाते हैं। हम नहीं सोचते कि इतना खर्चा कैसे करें। देखो मान लो किसी का बच्चा बीमार हो जाए, वो भले गरीब है, अगर एक सर्जन बोले मैं तेरे बच्चे को बचा सकता हूं लेकिन इसको बचाने का खर्चा 20 लाख है, तो सोचेगा उसका बाप कि 20 लाख नहीं है मरने दो? वो कहीं भी जाएगा, कहीं भी जाकर एक्स्ट्रा काम करेगा, अपने मित्र संबंधियों के आगे भी हाथ फैलाएगा मेरे बच्चे को बचा दो, 20 लाख मेरे पास नहीं है। कहीं से भी वो जुगाड़ करता है, कर्जा भी चुकाता है। तो क्या हम बाबा से इतना प्यार करते हैं कि बाबा के कार्य में कुछ भी हमें करना पड़े, मरना पड़े, लेकिन हम मर मिटेंगे लेकिन बाबा के कार्य में सदा सहयोगी रहे। बाबा के कार्य में सहयोग देना अर्थात सदा के लिए बाबा का सहयोग प्राप्त होना। हमारे पास कुछ भी नहीं होगा लेकिन बाबा हमारा भंडारा भरपूर कर देता है। कईयों को आदत होती है ये कहने की कि मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्या दूं? हमारे पास होता तो देते, हमारे पास तो इतना ही है। कभी अपने बच्चे को ऐसा बोलते? वो अगर बोले कि माँ हमारी टीचर जो है ना हमको लंदन लेके जा रही है, सभी जा रहे ट्रिप में, मैं भी जाना चाहता हूँ। उसकी माँ भी सोचती है मेरा बच्चा मेरा प्यारा, टीचर ने इसको सभी को अगर ये चांस दे रही है मेरा बच्चा क्यों मिस हो? कहेगी जा बच्चे मैं अपना जेवर बेच के भी तेरे को लंदन भेज दूंगी। तो हम देखो कैसे जिनसे प्यार है उनके लिए कैसे मर मिटते हैं। क्या हम बाबा को हम प्राणेश्वर कहते हैं? सचमुच बाबा ने हमारे कितने दुख संकट टाले, हमको एक प्रकार से प्राण दान दिया है बाबा ने। हम तो मरे हुए थे, अब जीते जी मरना अलग है, लेकिन इस दुनिया में आप देखिए जीते जी लोग कैसे मरे हुए मुर्दों की तरह चल रहे हैं, उनके अंदर कोई खुशी नहीं, ना उमंग ना उत्साह। हमारे बाबा के बच्चों में कितना उमंग उत्साह है। हर बार कोई भी कार्यक्रम हो, सबको अगर हम पूछेंगे चलो अभी हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, शिवरात्रि करेंगे, धूमधाम से करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। लौकिक में दुनिया में कोई एक खर्च करता बोलते अब नहीं बोलना मेरे को कुछ भी खर्चा करने के लिए, मैं कुछ भी नहीं है मेरे। बाबा के दरबार में कभी ये नहीं बोलना, मैं हमेशा बोलती कुछ भी नहीं है तो भी नहीं बोलना मेरे पास कुछ भी नहीं है, तथास्तु हो जाएगा। जो बाबा के दिल वाले बच्चे हैं ना, बड़ी दिल वाले, उनको बाबा भी दिल खोल कर देता है। मैं अक्सर उदाहरण बताती हूँ बच्चों का कि छोटे बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक बच्चा होता है जिसको आप चॉकलेट का डब्बा देकर एक चॉकलेट मांगो तो बोलता है नहीं दूंगा। आप दोबारा उसको चॉकलेट का डब्बा देंगे? क्योंकि वो किसी को भी नहीं बांटने वाला है। और दूसरा बच्चा ऐसे होते हैं, आप उनको एक चॉकलेट भी दो ना और उसको बोलो मेरे को देगा तो बोलता ले लो।
तो उसको दिल करता है इसको तो डब्बा पूरा देना चाहिए क्योंकि ये सबको बांटेगा, तो बाबा किसको देता? बाबा भी उनको देता है जो सबको बांटते हैं। तो जो बांटेंगे, समझो हम प्यार बांटेंगे प्यार बढ़ेगा, खुशी बांटेंगे खुशी बढ़ेगी, शक्ति बांटेंगे शक्ति बढ़ेगी। तो हम परिवार में क्या भरना चाहते हैं? हमारे परिवार में प्यार हो, लेकिन हर परिवार में ये सोचते हैं हमारे परिवार वाले हमारे जैसे हों, जिनको हम कह सके ये हमारा रिश्तेदार है ना। कोई करोड़पति हो और उसका भाई रोडपति हो, उसको कोई बोले ये तेरा भाई है, बोलते नहीं ये हमारा दूर का भाई है क्योंकि उसको भाई नहीं मानते, इंसल्ट फील करते ना। तो अभी कोई बोले कोई गलती कर रहे हमारे इस ईश्वरीय परिवार में, तो कोई पूछे ये देखो तुम्हारे आश्रम में बैज लगा के आता है, बाहर गालियां देता है और ये शराब भी पीता है, तो बोलते भी ये हमारे परिवार का नहीं है, ये दूर का है। तो हम क्या चाहते हैं, हमारे परिवार के लोग सब बाप समान हो या नहीं, सब शक्तिशाली हो, सब में उमंग उत्साह हो, सब में खुशी हो, सब में आपसी प्यार अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो भी प्यार टूट जाता है कभी कभी, है ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। अब अंडरस्टैंडिंग में कई बार देखिए आप ऐसा होता है संबंधों में प्यार कैसा रहता है। अभी जैसे हमारे बोस भाई लीला बहन के बच्चे अमेरिका में रहते हैं, अगर उनको कभी अचानक आना हो और वो बिना बताए आ जाए और उनका टाइम हो मिडनाइट में आने का, और उस दिन ये माताजी बोल के सोई लीला बहन की भाई अभी मेरे को कोई काम नहीं बोलना, मैं बहुत थक गई हूं, मैं किसी के लिए भी कोई भी आ जाए खाना नहीं बनाऊंगी, कल भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं आज बहुत थक गई। लेकिन अगर बच्चा आके बोले माँ ट्रैवल करके आया हूं बड़ी भूख लगी है, फिर क्या करेंगे लीला बहन? उठ के बनाएंगे, वो शक्ति कैसे आती है? प्यार है ना। तो प्यार में, बाबा के प्यार में कितनी शक्ति, आप सोचो अगर आपके बच्चे के प्यार में इतनी शक्ति है तो बाबा का प्यार हमें कितना शक्तिशाली बनाता है। हम क्यों कमजोर होते हैं? क्योंकि हमारा प्यार बटा हुआ है। कभी भक्ति में टूटा हुआ नारियल या कटा हुआ फल हम मंदिर में ले जाते हैं कि कैसे भी पंडित जी आधा तो नारियल मेरे को ही देने वाला है, चलो आधा मैं चटनी के लिए रख के जाती हूँ आधा लेके जाती हूँ, लेगा ही नहीं, भगवान को संपूर्ण चीज देनी है। और हम तो क्या करते, दिल के टुकड़े हजार किए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, हमारे कितने दिल के टुकड़े हैं, बोलते मेरे दिल में बाबा है, अभी टूटे हुए दिल में बाबा कैसे बसेगा, कहाँ बैठेगा? बाबा ने अपना दिल तक तो हमको ऑफर किया हुआ है, जितने भी बैठो टूटेगा नहीं, सब बैठ सकते हैं। तो हम सब दिल तख्त नशीन तब बनेंगे जो बाबा को दिल पसंद चीजें हैं, जो बाबा को दिल पसंद बातें हैं वो काम हम करें। सदा लौकिक में भी वही बच्चे अच्छे लगते जो सदा हां जी करते। बाबा भी हमेशा कहते हैं ना, पहले हां जी करो, कोई भी आपको कोई काम कहे हां जी, बाद में आपकी तबीयत का कुछ कारण है अलग से बताओ, सबके बीच में मैं नहीं करूंगी। तो क्या होता है, सबका एक इंप्रेशन बैठ जाता है ये कभी आज्ञाकारी नहीं बनने वाले, ये तो हमेशा अवज्ञा करते, इन्होंने ना ही बोलना है, बोलने वाला भी डरता है इसको बोलूंगी हाँ तो नहीं बोलेगा ये। और जो सदा हाँ जी करता उसके लिए भी हमें सोचना पड़ता है, ये हाँ जी तो कर देगा, सारा दिन इसी को ही पीसते रहेंगे सभी लोग, तो हम भी सोच के बोलते हैं ना। अभी एक भाई से हमने बहुत 6 घंटा काम करा लिया, अब हमें भी पता है थक गया, अभी इसको रेस्ट चाहिए, अभी फिर कोई बोले इसी को बोलो जरा झाड़ू पोछा भी कर दे इस हॉल का, वो तो हाँ जी बोलेगा। तो जो हाँ जी करते हैं बाबा सदा उनके आगे हाजिर रहते हैं। इस तरह से अगर हम अपने ईश्वरीय परिवार में भी स्नेह से चलते हैं तो बाबा की प्रत्यक्षता अपने आप होती है। किसके बच्चे हैं ये? क्योंकि हमारे भाव स्वभाव जो है ना, वो अगर हम एक साइड में कर दें कि ठीक है जो बाबा हमें सिखा रहे हैं, जो बाबा हमें बनाना चाह रहे हैं, हमें वो बनना है, हमें वो नहीं करना है जो माया हमसे कराना चाहती है। क्योंकि माया के हम बहुत आज्ञाकारी हैं। माया कहेगी सो जाओ, सो गए। बाबा कितना बोलता है जागो उठो, सवेरा हो गया तो अमृत वेला शुद्ध पवन है, रिकॉर्ड बंद कर देंगे, सो जाओ भाई अभी नहीं बाबा, हम सोए नहीं इसलिए अभी हमको सोने दो। बाकी सारा टाइम है आप सो सकते हो, बाबा का टाइम क्यों मिस करते हो। देखो हमारी जानकी दादी कई बार क्लास में बोलती थी, मेरे को डॉक्टर बोलते आपका इतना हाई बीपी है, आप हिलना भी नहीं उठना भी नहीं, ये ब्राह्मणियां मेरे को बंद कर देती है तो क्या हुआ, मैं तो सोफे पे बैठ के योग करती रहती हूँ, मुरली पढ़ती रहती हूँ। कभी हमने किसी दादी को नहीं देखा कि उनके हाथ में कोई मोबाइल है, वो मोबाइल में कुछ देख रही हैं। सदा बड़ी दादी को भी हम जब भी जाएंगे न्यूज़पेपर 5 मिनट बस रख दिया, सारा टाइम मुरली और बाबा। उनके मुख से भी कभी कुछ सुनेंगे तो सिवाय बाबा की कहानियों के कुछ नहीं सुनाया कि बाबा हमसे क्या क्या करते थे, क्या क्या सिखाया बाबा ने हमको, क्या क्या खिलाया बाबा ने हमको, कैसी पालना दी बाबा ने हमको। वो रूहानी पालना, वो बाबा की साकार पालना जो है, कितना बच्चों को अंदर से मजबूत करके रखी है। अव्यक्त पालना भी कम नहीं है, हम भी बहुत मजबूत है ना, आप सब भी मजबूत हैं सभी के, हिलने वाले हैं कोई, कोई हिलने वाले हैं तो हाथ खड़ा करो, नहीं हिलने वाले देखेंगे अभी, क्योंकि माया भी देखती रहती है कौन है जो नहीं हिलने वाले, देखती हूं मैं भी उनको। तो जो सदा अपने ऊपर ध्यान रखते, दूसरों पर हमें बाबा ने कहा है ना, आप दूसरों के वकील और जज बनकर नहीं आओ, आप अपने जज बनो, अपने आप को देखो, अपनी चेकिंग करो। हमको आदत होगी दूसरों की चेकिंग करना, अगर हम अपनी चेकिंग में और अपने को चेंज करने में लग जाए तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। क्योंकि अपनी करेक्शन करनी, फाइनल में जैसे पेपर भी होता है ना, तो हम एक बार लिख देते हैं, फाइनली हम चेक करते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है जिससे मेरे नंबर कट हो जाए। तो अगर हर दिन, दादी हमेशा हमको बोलती थी पोता मैं लिखते हो कितना टाइम लगता है, देखो व्यापारी लोग भी सारा दिन की अपनी आमदनी भी लिखते, खर्चा भी लिखते हैं ताकि वो देखते हैं कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। ऐसा ना हो कमाया 4 आना और खर्चा 8 आना बताए, तो कर्जे में रहेंगे ना। तो इसलिए हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का कर्ज न रहे। और वैसे भी देखो बाबा की कई बातें हैं जो आज हम देखते ब्राह्मणों में वो पालन करने की शक्ति नहीं है। जैसे बाबा ने शुरू से कहा हुआ है, ब्राह्मण ब्राह्मण आपस में पैसे की लेन देन नहीं करना, कोई दया भी नहीं दिखाना। ऐसे नहीं कि अभी हमारी क्लास में कोई शाहूकार है, हम बोले भाई भाई साहब आप तो पैसे वाले हो, प्रकाश भाई मेरा मधुबन का टिकट आप कटा दो ना। अब बहन जी को नहीं बताना क्योंकि फिर बहन जी आपको भी डांट लगाएंगे, मेरे को भी लगाएंगे। आप दयालु बनते हैं, मैं तो दया का सागर का बच्चा हूं ना, लेकिन श्रीमत कहां गई, श्रीमत कहां गई, ये तो हमने अपने आप में फंसा दिया, नाम रूप में फंस गए। हमने बाबा से थोड़ी उसका प्यार जुटाया, उसको तो आप याद आएंगे प्रकाश भाई बहुत अच्छा है, जब टिकट मांगो दे देता है, जब कुछ कहो ला देता है। तो हम करें भी अगर कुछ सेवा तो हम बड़ों से पूछ कर करेंगे, तो कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा, कोई आपसे पैसा मांगने नहीं आएगा। बहुत से भाई बहने व्यापार भी कर लेते फिर जब डूब जाते हैं ना, तो बहन जी जरा आप इसको डांटो, मैं क्यों डांटूं भाई, आप दोनों तो अच्छे मित्र बन गए और मैं शत्रु बनूं कि अभी आप इसको डांटो मेरा पैसा नहीं देगा तो धर्मराजपुरी में जाएगा वो। अरे मैं क्यों हिसाब किताब बनाऊं ये सब डराने के लिए, हम बीच में नहीं आते हैं। इसलिए सोच समझ कर करना, क्योंकि ये भी कर्मों की गुह्य गति है, जिसको देंगे अवश्य जहां आपका धन जाएगा वहां आपका मन अपने आप जाएगा। वही धन अगर मैं बाबा की सेवा में लगाऊंगी, हम बाबा के यज्ञ में दे दे, कई ऐसे भाई बहने हैं जो कहते हैं बहन जी अगर कोई ऐसे अच्छे सेवाधारी हैं आपको लगता है कि उनको मधुबन ले जाना चाहिए पर उनके पास ताकत नहीं है, तो हम बाबा के यज्ञ में मदद करते, आप उनको टिकट दो, उनका यज्ञ से प्यार जुटेगा कि देखो आज बाबा ने हमारी टिकट दी, कल वो सोचेंगे हम कुछ बाबा के यज्ञ में करेंगे। और अगर आप आपस में खुश कर रहे तो आप ही तो उनके बाबा हो गए, वो क्यों बाबा को याद करेंगे, क्यों यज्ञ की सेवा करेंगे, और आपको क्यों देंगे, आपके पास तो बहुत है ना, इसलिए तो दिया, आपको क्या जरूरत है हमसे लेने की। फिर हम मित्र तो बने, हमने बहुत अच्छी मित्रता की, बाद में क्या होते हैं, हम शत्रु बन जाते हैं, हमारी शुभ भावनाएं खत्म हो जाती है। यहां हमको बाबा ने श्रीमत क्या दी है कि हमें हर एक से शुभ भावना, शुभ कामना हर एक के प्रति रखनी है, कैसा भी हो। बाबा सभी को मीठे बच्चे बोलता है या कभी बोलता है बाबा आधे मीठे बच्चे, आधे कड़वे बच्चे, आधे फीके बच्चे, हाँ सबको मीठे बच्चे, एक सम दृष्टि से बाबा देखता है, कैसे भी अवगुण वाले कुछ भी होंगे, लेकिन बाबा ने सबको बराबर प्यार दिया, एक जैसी टोली दी, एक जैसी सौगात, सबको एक जैसी चादर मिली ना, कभी कल कोई करोड़पति भी होगा, कोई गरीब भी होगा, कोई कईयों को जरूरत भी नहीं होगी, तो भी ये प्यार है, बाबा का प्यार है। सौगात को हम उस रूप से ना देखें क्या दिया है, हैं? लेकिन किससे मिला है, ये भगवान से। मंदिर में एक शॉल पहना देते कितने खुश हो जाते हैं, एक दुपट्टा ही देते हैं ना, गुरुद्वारे में भी जाएंगे मामूली सा ही होता है कॉटन का, पर वो भगवान का है, वही अगर यहां देंगे क्या मिला, मधुबन में हम इतना गए खर्चा करके इतना दिया, हमको क्या मिला, अरे आपको प्यार मिला, ये प्रभु प्यार है। प्यार में ये नहीं देखा जाता कि पेन दिया या पेंसिल दी या चादर दी या रुमाल, कहीं रुमाल देकर के भी खुश होते। दादी पता है कई बार क्या करती थी, कई माताएं बहुत रोती थी दादी की गोद में आकर के, दादी अपना रुमाल दे देती थी, आज के बाद कभी रोना नहीं, पोंछ देती ये ले हैंकी, कितना खुश होते थे, वाह दादी का हैंकी मिला। तो प्यार जो है उसको हम उसका मूल्य नहीं आंक सकते, इसका मूल्य क्या है, आपका प्यार क्या है। आप अगर हम बाबा को दे करके, कई लोग क्या करते गिनते रहते, अभी हमने जो है ना जनवरी में इतना दिया, 18 जनवरी में दिया, फिर न्यू ईयर पे भी दिया था, फिर अभी फिर बोल रही देखो अभी फरवरी में बाबा मिलन में जाना है, फिर वहां इतना देना बोलते, फिर बोलते ये अभी जो है शिवरात्रि आ गई, फिर अभी होली का भी फंक्शन, फिर अभी कोई महारथी आ रहा है, ये क्या है, अरे हमारा धन सफल हो रहा है, हम क्या बोले बाबा को, तन भी तेरा, मन भी तेरा और धन भी तेरा, सिर्फ ठगी से, बाकी सब मेरा ही मेरा है, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा है ना। तो हम बहुत भगत ठगत थे, अभी भी ठगत है, गिनते क्यों हैं, क्यों गिनते हो, बाबा जो देता है वो गिनता है, बाबा की पालना का आप सोचो हम क्या दे रहे हैं उसके बदले में, कुछ भी नहीं दे रहे इतना। अगर आपको कोई ऐसे आपके बच्चे को प्यार कर दे ना, आपके बच्चे को ही प्यार कर दे, तो आप सोचते इसको क्या दे दूं मैं, मेरे बच्चे को प्यार किया है ना, आप उसको हर चीज लाके देंगे, ये मेरे बच्चे को बहुत प्यार करती है। बाबा भी खुश होता है जब हम बाबा के बच्चों को प्यार करते हैं, उसकी रचना है ना, ये सब शिव बाबा की रचना है। तो अगर हम आपस में एक दूसरे को प्यार नहीं करते, बाबा को अच्छा लगता है। बाबा ने एक बार पूछा भी था कि अगर सबसे पूछे बाबा से कितना प्यार है, तो उसका तो मापदंड है ही नहीं है, कितना हम हाथ फैलाएं तो भी कम है ना, आकाश जितना है नहीं, उससे भी ज्यादा है, परम धाम से भी ज्यादा है ना, उससे भी ऊपर जा सकता है बाबा का प्यार। परिवार से सोचना पड़ता है, सारे परिवार से प्यार है, अलौकिक परिवार में किसी से है, किसी को तो हम देखना भी पसंद नहीं करते, दृष्टि भी नहीं देंगे, टोली भी नहीं देंगे, क्योंकि हमको नहीं पसंद ये। तो अगर हम ऐसा करेंगे, बाबा को कितना अंदर में दुख होता होगा कि मेरी सिलेक्शन को ठुकरा दे रहे, मैंने तो पसंद किया है, तुमको पसंद क्यों नहीं आया, मैंने पसंद किया है ना, भगवान ज्यादा समझदार है, हम ज्यादा समझदार है। तो बाबा का प्यारा बनने का जो पुरुषार्थ करेंगे, वो ईश्वरीय परिवार में अवश्य प्यारा बनेगा, सब प्यार करेंगे, सब कहेंगे आप हमारे पास आओ, आप हमारे पास आओ, क्योंकि आप ज्ञान की बातें करते हो, आप स्वोन्नति की बातें करते हो, आप ईश्वरीय परिवार में प्यार बढ़ाते हो, प्यार बांटते हो, आप हमारे पास भी आओ। और जो सबको प्रिय लगता है बाबा को, आप अपने आप को प्रिय नहीं लगेंगे। अगर मुझे, मैं किसी को पसंद नहीं करती हूं तो मुझे भी अंदर लगता होगा ना, मैं कहां सबको पसंद आती हूं, तो हम स्वयं प्रिय भी नहीं हुए। तो सबसे पहले बाबा से प्यार करना सीखो। जिसको बाबा से प्यार होगा कभी नहीं बोलेगा मेरा योग नहीं लगता है। जिसको प्यार होता है, देखो अभी माता ही यहां आती है ना, अपने लिए तो सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, कई लोग कुछ नहीं ले जा सकते, जो टोली मिलती वही जमा करके बच्चे को दूंगी, पोतरे को दूंगी, पोतरी को दूंगी, ये प्यार है ना। कुछ बाहर जाएंगे तो कुछ खिलौना भी खरीद के लाएंगे, चलो मेरी बहू के लिए कोई साड़ी ले जाऊं राजस्थान की, बेटी के लिए भी ले जाती हूँ, बेटे के लिए भी कुछ ले जाती हूँ। ऐसे बाबा के लिए हमारे संकल्प चले, मैं बाबा के घर के लिए क्या लेके जाऊं, बाबा के लिए क्या, कोई अच्छा फल दिखे मैं बाबा को पहले भोग तो लगाऊं। क्योंकि हमारी पुरानी माताएं थी ना, आम का सीजन आएगा पहले नहीं खाएंगे घर में, पहले बाबा के घर में, सीताफल आया पहले बाबा के घर में फिर आम खाएंगे। ऐसे हर चीज, जिसको प्यार होगा वो बाबा के लिए हर चीज कुर्बान करता है, वो गिनेगा नहीं बाबा के प्यार में हम इतना क्या देना, हम मर जाना क्या, हमारा परिवार नहीं देखना क्या, अरे वो देखेगा ना। जब चोर लेकर चले जाते सब कुछ, तब भी तो आपका परिवार चलता है, नहीं चलता, किसी किसी की पूरी तनख्वाह जल जाती है, है ना। कई बार कैंडल रख दिया, एक हमारे पास परिवार में ऐसा हुआ था, करीमनगर में कैंडल रखी थी, लाइक करंट गया और वो भाई जो तनख्वाह लाया था सारा ही जल गया नोट, तो भी तो घर चलता, नहीं चलता। अगर बाबा के पास स्वाह किया तो क्या भाग्य बन गया, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है बाबा से, और क्या कमी है। और बाबा ने वचन दिया है, तुम एक बार मेरे पर बलियार जाकर देखो, मैं तुम्हारे पास 21 जन्म बलिहार होता हूं। हर एक वैसे तो जन्म जन्मांतर बाबा हमारे ऊपर बलिहार है, अभी कम बलिहार है बाबा, कलयुग में भी हम थे कोई ऐसे भूखे मरे हुए तो नहीं थे ना कि रोड पर बैठकर भीख मांग रहे थे और ज्ञान मिला तो खाना मिला हमको, ऐसा तो कोई परिवार नहीं। लास्ट तक हमें बाबा ने अच्छी तरह से पालना दी। तो बाबा हमेशा ये भी कहते थे, बच्चे जब यज्ञ में हम जब खर्च करते हैं, यज्ञ में आप सब पेट काट कर देते हो, तो हम लोगों को भी बाबा ने ये सिखाया, इकोनॉमी से चलना, उड़ाना नहीं, क्योंकि हमारा भी भाग्य बिगड़ता है। ऐसा नहीं, देखो हमको दादियां छोटी छोटी चीजें सिखाती थी, कभी कभी हंसी भी आती थी। हम जब ये ट्रेनिंग सेंटर है ना, उसके पीछे साइड में हम लोग कपड़े धोते थे, तब अटैच बाथरूम वगैरह नहीं थे, तो मैं छोटी थी मुझे मालूम नहीं था साबुन कितना लगाना, कपड़े धोने की आदत नहीं थी। अब जानकी दादी के पास आए तो हमको अपने कपड़े धोने का, तो सर्फ भी ज्यादा डाल लिया और फिर ऊपर से रिन लगा के, और मैं उसको ब्रश कर रही थी, पूरा साबुन सर्फ नाली में जा रहा था, दादी मेरी पीछे से आंख बंद किए, प्रकाशमणि दादी, तो मैं बोली कौन है, छोड़ो ना मेरे कपड़े धो रही बोली मैं प्रकाशमणि मैं बोली दादी आप, बोली क्या कर रही, मुट्ठी कितना वेस्ट कर रही है सर्फ, क्या करना दादी, वो मैल है ना, वो तो जा रहा है ना, तो बोली ये बकेट में निचोड़, क्या करेंगे, बोले इससे पूरा फर्श बाथरूम धुलाई होगा, पानी भी वेस्ट नहीं करना, एक बकेट में निचोड़ा है ना, वो दूसरी बकेट में दूसरा पानी लेके निचोड़ो, वो वाले से बाथरूम धुलाई हो सकता, आंगन धुलाई हो सकता, इतना इकोनॉमी सिखाते थे। कहीं से भी निकलते हो स्विच ऑफ करो, करंट वेस्ट नहीं होना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना। अभी भी देखो यहां डायरेक्शन देते रहते हैं ना, सब जगह पानी की शॉर्टेज होती है इस समय, हम उतना ही खर्च करें जितना जरूरी है, ये भी बाबा के घर की बचत करना भी बाबा के यज्ञ में जमा करने के बराबर है। कुछ बचा दिया हमने इकोनॉमी की ना, वो भी बचत है, मेरा तो भाग्य में जमा हो गया ना। तो इसलिए संगम युग में हमें सब कुछ जमा करना है, अपना समय, अपनी शक्तियां, अपने जो भी तन मन धन है उससे हमें सेवा करके जमा करना है। क्योंकि बाबा को दो बातों का बैलेंस चाहिए, कि याद भी करो और सेवा भी करो, इससे आप माया से सेफ रहेंगे, डबल लॉक है। याद और सेवा का बैलेंस है तो ब्लिसफुल जीवन है। अगर याद में रहे, सेवा नहीं की तो भी नहीं, बैलेंस नहीं है। सेवा में बहुत रहते, योग नहीं लगाते तो भी बैलेंस ठीक नहीं है। और बैलेंस ठीक नहीं होता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं गिरते हैं ना हम। हमारे पैर का बैलेंस ऊपर नीचे हो, गिर जाएंगे। कहीं भी हम कोई कुर्सी पर बैठे हैं, उसका बैलेंस ठीक नहीं है तो हम गिर जाते हैं। तो जहां बैलेंस आउट होता है वहां ही हमारी गिरती कला शुरू होती है। कहीं भी हम देखें हमारा बैलेंस बराबर रहे, बाबा के प्यार में, बाबा के परिवार में, बाबा के हर बच्चे से हमारा उतना स्नेह हो जितना बाबा स्नेह देता है। और स्नेह देकर देखो स्नेह के रिटर्न में आपको क्या मिलता है। नफरत करने से हमको क्या मिलता है, खुशी मिलती है? प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है, खुशी बढ़ती है। तो प्यार बांटना माना खुशी बांटना। तो इसलिए हम सब बाबा के प्यारे और इस दुनिया से न्यारे बच्चे हैं। ऐसा प्यारा बनना जो बाबा सर्टिफिकेट दे। सचमुच हैदराबाद के बच्चे मेरे एक एक रतन जो हैं, दिल के दुलारे हैं। खाली हैदराबाद नहीं, जो भी इस ईश्वरीय परिवार में हैं, एक एक राज दुलारे बच्चे हैं, है ना। तो ऐसा सर्टिफिकेट लेकर हम पांचवी दानर होंगे। ओम शांति।
दिल और नहीं कुछ चाहे अब, जब से तुमको जाना है।
दिल और नहीं कुछ चाहे अब, जब से तुमको जाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। पर ओ बाबा तू बना जो मेरा मित्र। नाज है खुद पर ओ बाबा तू बना जो मेरा मित्र।
तब जान लियूं ही तुझको मैंने जो जाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा बस तू ही मेरा खजाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा बस तू ही मेरा खजाना
खजाना है।
बस तू ही मेरा खजाना है।
बस तू ही मेरा खजाना है।
बहुत सुंदर कला आप सभी ने सीखी। कौन सी? सर्व का प्रिय बनने की। दीदी को एक हाथ हिलाकर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।